ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ತಪಸ್ಯಾ ಭಟ್ಟಿ ಮೇ ಯೇ ಸುನಹರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೈ ಜಬ್ ಹಮ್ ಸಭಿ ಜಿನ್ಕಾ ಇಂತಜಾರ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ವೋ ಹಮಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ ಕಿ ಶಾನ್, ಪಾಂಡವ ಸೇನಾ ಮೇ ಪಾಂಡವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೂರ್ಯ ಭಾಯಿ ಜೀ ಹಮಾರೆ ಸನ್ಮುಖ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ ಔರ್ ಹಮ್ ಸಭಿ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ದಿಲ್ ಕೆ ಸ್ನೇಹ ಸೆ ಭ್ರಾತಾ ಜೀ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಏಕ್ ಬಾರ್ ಸಭಿ ಹಾಥ್ ಹಿಲಾಯೆಂಗೆ ಭಾಯಿ ಸಾಹಬ್ ಕೋ. ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಔರ್ ಶಕ್ತಿಯೋ ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಕೆ ಆಪ್ ಬಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ, ಜಿನ್ನೇ ಹಮ್ ಬಹುತ್ ಪ್ಯಾರ ಸೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವ್ ಕಹಕೆ ಬಿ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಯಾದ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ವಿಶೇಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ ಕಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾಲನಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಪಾರ್ಟ್ ಬಜಾ ರಹೆ ಹೈ. ಆಪ್ಕಿ ಯೇ ಗುಪ್ತ ಸೇವಾಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಹೈ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಚ್ಚೆ ಜೈಸೆ ಪ್ರಭು ಮಿಲನ್ ಕೆ ಪ್ಯಾಸೆ ಹೋತೆ ತೋ ಭಾಯಿ ಸಾಹಬ್ ಸೆ ಬಿ ಸನ್ಮುಖ ಮಿಲ್ನಾ, ಇನ್ನೇ ನಜದೀಕ್ ಸೆ ದೇಖ್ನಾ, ಸನ್ಮುಖ ಸುನ್ನಾ, ಯೇ ಬಿ ಆಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಹೋತಿ ಹೈ. ತೋ ಆಜ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕಿ ಯಹ ಆಶ ಬಿ ಪೂರ್ಣ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ. ವಿಶೇಷ ಸೂರ್ಯ ಭಾಯಿ ಕೋ ಸಿದ್ಧ ಯೋಗಿ ಕಹೂ, ಜಿನ್ನೊನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದ್ವಾರಾ ಸಿಖಾಯೆ ರಾಜಯೋಗ ಕೋ ಔರ್ ಬಿ ಅಧಿಕ ಸಹಜ ಔರ್ ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಕಿಯಾ ಹೈ. ವಿಶೇಷ ಸ್ವಮಾನ ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಿತಿ ಕೋ ಮಜಬೂತ ಬನಾನಾ, ಯೋಗ ಕೆ ಪ್ರಯೋಗೋ ಸೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಗೆಹರೆ ಅನುಭವ ಕರ್ನಾ, ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ದ್ವಾರಾ ಅಪನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೋ ಅಪನೆ ಜೀವನ ಕೋ ಸೆಂಟರ್ ಕೋ ಪರಿವಾರ ಕೋ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಬನಾನಾ. ಆಪ್ಕಾ ಐಸಾ ಸುಂದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೈ ಜೋ ಅನೇಕಾನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಸ್ತ್ರೋತ ಹೈ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಭಾಯಿ ಸಾಹಬ್ ಕೋ ಸನ್ಮುಖ ಅನುಭವ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಜೋ ಬಾಬಾ ಕೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಲೇಕಿನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ ಕೆ ಬಿ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಹೈ. ಹಮ್ ಸಬ್ ಕಿ ದುವಾಓ ಕೆ ಪಾತ್ರ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕೆ ವರಿಷ್ಠ ಭ್ರಾತಾ ಸೂರ್ಯ ಭಾಯಿ ಜೀ ಕಾ ಫಿರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಹಮ್ ದಿಲ್ ಕಿ ದುವಾಓ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಭಾಯಿ ಸಾಹಬ್ ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಸದಾ ದುವಾಯೆ ನಿಕಲ್ತಿ ಹೈ, ಐಸಿ ಆತ್ಮಾಯೆ ಜೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸಾರ ಕಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲನ್ಹಾರ ಹೈ, ಏಕ್ ಸ್ವರೂಪ ಜೋ ಹಮ್ ಸಬ್ನೆ ವರ್ಷೋ ತಕ್ ಅನುಭವ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಬಾಪ ದಾದಾ ಕಿ ಪಧ್ರಾಮಣಿ ಸೆ ಪೆಹಲೆ ಆಪ್ ಬಾಪ ದಾದಾ ಕಿ ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ ಬನ್ ಕೆ ಆತೆ ಹೈ ಔರ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ವಿಧಿಯಾ ಬಾಬಾ ಸೆ ಮಿಲನ್ ಮನಾನೆ ಕಿ ಹಮ್ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಸಿಖಾತೆ ಹೈ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರಾತೆ ಹೈ, ವೋ ಅಬ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಯಾದ ಆತಿ ಹೈ. तो भाई साहब आज हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता जो संगम युग में हम सब का अंतिम स्वरूप है, फरिश्ता स्थिति कैसे बने, चेहरे और चलन में हम फरिश्ता रूप कैसे अनुभव करें, भाई साहब हमें विशेष फरिश्ता स्वरूप के लिए मार्गदर्शन करेंगे. जैसा आज का भट्टी का जो विषय है जो स्वमान है वो भी है मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, तो भाई साहब हमें फरिश्ता बना देंगे. आदरणीय सूर्य भाई जी.
ओम शांति. बनना चाहते हैं क्या फरिश्ता? लगता तो नहीं है, सोच के बताओ. कभी सोचा है कि फरिश्ता भी बनना है? चिंतन करो जरा, क्योंकि जो कुछ हमें बनना होता है उसका संपूर्ण ज्ञान भी हमारे पास हो और उसे पाने का प्लान भी हमारे पास हो. बहुत ब्राह्मण, थोड़ा मैं खुल के बोल लेता हूं सब जगह, बहुत ब्राह्मण सोचते नहीं है कि फरिश्ता बनना है. बहुत पुरानी बातें हो गई कि बाप समान बनना है, हो गई या नहीं? सच बताओ, अभी हमें इन्हें फिर से रिन्यू करना है, फ्रेश करना है. और संपूर्ण ब्राह्मण परिवार में एक लहर फैलानी है कि अब हमें वो करना है जो केवल अब ही किया जा सकता है, न अब से पहले न अब के बाद। फरिश्ता स्वरूप योगी जीवन, फरिश्ते की परिभाषा ही बाबा ने ऐसी दे दी पहली पहली कि उसको सुनकर अधिक तो लोग सोचते हैं छोड़ दो क्या करेंगे फरिश्ता बनकर। फरिश्ता माना बोलो, खुल के बोलो, डरो नहीं। जिसका कोई रिश्ता न हो किसी से, पर यहाँ तो रिश्ते ही रिश्ते हैं हर कदम पे। अब कैसे इसमें बैलेंस लाया जाए, और क्या अर्थ है इसका? रिश्ते तो हैं ही, रिश्तों को छोड़ के कहाँ भागेंगे? रिश्तों के बिना तो संसार ही नहीं है। परंतु बिल्कुल छोटा कर दिया बाबा ने, सार कर दिया है। क्या सार कर दिया? जिसमें ये सब समा जाएगा, तुम भी आत्मा हो और सब आत्माएं हैं। ये चिंतन आप अपने घर में बैठकर भी ये चिंतन करें, ये सुंदर खेल कैसे चलता आया है सतयुग से अब तक, कब हम उतरे थे संसार में, कैसे कैसे दिन बीते, मास वर्ष युग बीते, हम यहाँ पहुंच गए हैं। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। ये चिंतन हमें यहाँ से ऊपर उठा देगा। इसे ही बाबा कहते हैं जो मुरलियों में आता है, अभी भी आया, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकते रहना चाहिए, चिंतन रहे, याद रहे वो चीजें, तो हम रिश्तों में रहते हुए भी रिश्तों के प्रभाव से, रिश्तों के आकर्षण से, रिश्तों का उल्टा सुल्टा प्रभाव है, दोनों हैं, अच्छा भी और बुरा भी, मोह भी तो बहुत, झगड़े भी, उन सब से ऊपर उठ सकते हैं। तो पहली चीज तो यही, फैलाएंगे लहर ब्राह्मण परिवार में, आपके ग्रुप से फैल जाए। हमारे यहाँ तो करते हैं बहुत, मधुबन में भी, ज्ञान सरोवर में भी, नीचे भी, अब सब जगह लहर फैल जाए। हमें अंतिम लक्ष्य को पाना है, उसके बिना हम घर वापस नहीं जा सकेंगे। अंतिम लक्ष्य संपूर्ण बनना, फरिश्ता बनना। क्या है ये फरिश्ता स्वरूप? इसको भिन्न भिन्न रूप से देखा जा सकता है। फरिश्ता माना सब मुरलियों से है, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ वो सब मुरलियों से है। जब तुम संपूर्ण पावन बन जाते हो तब तुम फरिश्ते बनते हो। संपूर्ण पावन के दो अर्थ, पवित्रता और सारे विकर्म नष्ट करके आत्मा स्वच्छ हो जाए, यह है संपूर्ण पावन स्थिति। हमारी स्थिति बहुत निर्मल हो जाए, हम सोचें फरिश्ते की कुछ और परिभाषाएं भी निकाल लें। फरिश्ता माना सभी आकर्षणों से मुक्त, सभी बंधनों से मुक्त। देखो एक हंसी की बात और गहरी बात, फरिश्ते में फरिश्ता और फरिश्ती नहीं है। बहनें भी क्या बनेंगे? फरिश्ती नहीं। भाई भी क्या बनेंगे? इसका अर्थ है कि जब हम नर नारी के भान से ऊपर आ जाएं, तब फरिश्ते बनेंगे। पूरी आत्मिक फीलिंग्स में आ जाएं, हमने भी ये शरीर कभी नर कभी नारी, पता है ना सबको, आधे नर आधे नारी। 84 जन्मों में बोलो कितने नर कितने 42 और नारी माताओं को तो पता ही नहीं, सोचते हम तो सदा माता ही रहेंगी। क्या विचार है, पुरुष बनना है? आत्मा दोनों स्वरूप में रहती है, बाबा की मुरलियों में है, हर जन्म में भी बदल जाता है पर कभी कभी दो जन्म के बाद बदलता है। तो हमें संपूर्ण पावन भी होना है और संपूर्ण आत्मिक दृष्टि आत्मिक स्मृति में भी आ जाना है। संसार से ऊपर उठ जाएं हम, फरिश्ते अर्थात क्या दिखाते हैं, एक फुट ऊपर होते हैं धरा से, अर्थात धरती के आकर्षण से बाहर हो गए। धरती का आकर्षण देह का आकर्षण, इसके आकर्षण से ऊपर निकल गए हैं, तो हम हुए फरिश्ते। और फरिश्ते की एक सुंदर परिभाषा साकार मुरलियों में और आई है, जब तुम संपूर्ण रूप से योगयुक्त हो जाते हो, ये है फरिश्ता स्वरूप। इन सब बातों को सुनकर आप ये न सोचे तो बड़ी बड़ा भारी काम है, लोगों ने यही सोच सोच कर इसे छोड़ दिया है कि छोड़ो इस नई टेंशन को, अपना ऐसे ही ठीक है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब हम चलें एक सुंदर चीज को अनुभव करें और उसका अभ्यास भी करेंगे। देखो आत्मा इस शरीर में, हम इतना तो जानते ही आत्मा शरीर में बैठी है, पर आत्मा दो शरीरों में बैठी है, एक बाहर स्थूल शरीर जो दिख रहा है, इसके अंदर ठीक ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही प्रकाश का शरीर जो पूरे शरीर में फैला हुआ है व्याप्त है, उसी को भारत में शास्त्रों में कहीं कहीं ये मान लिया आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। आत्मा तो यही है, वो सूक्ष्म शरीर पूरे शरीर में है, अंग अंग जैसा ये शरीर वैसा ही वो शरीर। और वो कैसे बनता है अब ध्यान से सुन लेंगे, आपको समझने में और समझाने में काम आएगा। जो कुछ हम लगातार सोचते हैं उसकी एनर्जी उसकी लाइट पूरे देह में हर पल फैलती रहती है, हमारे हर संकल्प की एनर्जी हर सेकंड पूरे देह में फैल रही है और वो देह में सूक्ष्म देह का निर्माण करती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा इस लाइट के शरीर को भी निकाल कर साथ ले जाती है। जब से आत्मा परम धाम से आई, मैं धीरे बोल रहा हूं ध्यान दो, पहली बार हम धरा पर आए, शरीर में आके संकल्प शुरू हुआ, सूक्ष्म शरीर बन गया और वो 84 जन्म 5000 साल हमारे साथ रहता है, वो बदलता आया। सतयुग के पहले जन्म में भी वो बदलता आया धीरे धीरे। आत्मा उस शरीर के सहित बाहर जाती है और उस शरीर के सहित ही नए शरीर में प्रवेश करती है, निराकार रूप में नहीं। ये है हमारा फरिश्ता रूप। क्लियर है? मैं डबल लाइट फरिश्ता तो हूं ही, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। रेड लाइट करो भाई। अब हम ये अभ्यास करते हैं कुछ क्षणों के लिए। संकल्प करें ये देह स्थूल देह जैसे कि मुझसे अलग हो गई और बच गई मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में बैठी हुई। लाइट हाउस माइट हाउस मेरे अंग अंग से लाइट और माइट की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूँ। मैं सभी आकर्षणों से मुक्त फरिश्ता हूँ। मैं परमात्म संदेश वाहक फरिश्ता हूँ। इस धरा पर अवतरित हूँ। ओम शांति। ये छोटी सी प्रैक्टिस आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर को भी देखने की, कभी बहुत पहले बाबा की एक मुरली थी इसी हॉल में अव्यक्त। ठीक है, तुम आत्मा को नहीं देख सकते, छोड़ दो, फरिश्ते को देखो। हालांकि वो भी सूक्ष्म है, पर बाबा ने एक दूसरा रूप दे दिया। तब हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की कि सबके पीछे उसका फरिश्ता रूप खड़ा है। जैसे इस देह से निकलकर ऊपर आ गया है। ये भी बड़े आनंदकारी अभ्यास हैं। चाहे फरिश्ता बनना हो, चाहे योगयुक्त जीवन बनाना हो, और चाहे एक आजकल की बात, व्यर्थ से मुक्त होना हो, करंट प्रॉब्लम सारे संसार की व्यर्थ बढ़ता जा रहा है। जिसका बढ़ रहा है सो बढ़ ही रहा है, घटने का नाम नहीं। इसको घटाना है तो क्या करेंगे? आप दो चीजों की धुन लगा दें जिनका बिल्कुल योग नहीं लगता। एक मिनट मन एकाग्र नहीं होता वो 7 दिन के लिए, केवल एक अभ्यास कर लेना। नोट कर लो, ये समस्या बहुतों की है। बहुतों का योग नहीं लग रहा है, कलयुग के अंत का प्रभाव हो गया है बहुत ब्राह्मणों पर, और तरफ बह गई हैं आत्माएं। ये दोष नहीं है किसी का, कलयुग के अंत का भारी प्रभाव चल रहा है, जैसे आंधी चल रही हो। मैं मस्तक मणि हूं, सारे दिन में 100 बार याद कर जाओ। आपको और कुछ भी ना हो, केवल याद कर जाओ, मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। हर घंटे में 8 बार 10 बार मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। फिर अच्छा होने लगे तो अपने स्वरूप को देखो, चमकती मणि, यहाँ बैठी हूँ मैं, किरणें फैल रही हैं। एक अभ्यास। दूसरा, ये सब फरिश्ता बनने की तरफ हमें ले चलेंगे। दूसरा, कोई एक स्वमान जोड़ देना इसके बाद, इसके साथ अगले हफ्ता, मैं आत्मा महान आत्मा हूँ। इसमें बहुत अच्छा होता है, एक हफ्ते के लिए 7 स्वमान जोड़ दो और वही अभ्यास चालू करो। मैंने आपको कहा इस बात पे ध्यान देना, आपको कोई अनुभव नहीं होता, कोई ना हो कोई बात नहीं, आपको कुछ दिखता नहीं, विजुअलाइज नहीं होता, छोड़ दो उसे भी, केवल याद करो। क्या होगा? जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाएगी, स्वतः ही धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा। मैं एक महान आत्मा हूँ, आत्मा को भी देख लो ये संकल्प। दूसरे दिन मैं शिव शक्ति हूँ, तीसरे दिन मैं इस देव इस देवी हूँ, चौथे दिन मैं विजयी रत्न हूं, ऐसे एक एक स्वमान जोड़ दो। फिर तीसरा अभ्यास कर लो, मैं फरिश्ता हूं। 7 दिन, 21 दिन की ये साधना कर लें, 100-100 बार कम से कम इसकी धुन लगानी होगी। देखो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भूल गए, आज घर में मेहमान आ गए, आज हम बहुत बिजी हो गए, ये तो सदा ही मनुष्य कहता है। सभी इस बात पे ध्यान दें, अगर कारण देने की आदत पड़ गई, कारण तो है, ऐसा किसी के पास नहीं है कि कोई कारण ना हो पुरुषार्थ की ढिलाई का, लेकिन अगर कारणों में रहने की आदत पड़ गई तो कारण रोज मिलेंगे, हर घंटे मिलेंगे। लेकिन जिनको करना है, बोलेंगे आगे की लाइन, जिनको करना है आपको बोलना है, बहुत अच्छा बोला, करना ही है और क्या दृढ़ता, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हमने ऐसी माताएं देखी, रोज मुरली में जाना है, कर्फ्यू लग गया तो भी पहुंच रही हैं। पुलिस वाला, ए कहां जा रही हो, सत्संग में जा रहा हूं भाई। अच्छा इधर छोटी गली से निकल जाओ, वही रास्ता बता देते हैं। दिल्ली में हम थे, कर्फ्यू लगते थे, माताएं 5-7 तो मुरली सुनने पहुंचती थी। कैसे पहुंची, बारिश हो रही है, बहुत ब्राह्मणों ने संकल्प कर लिया आज तो बारिश हो रही है, आज नहीं जाएंगे, उन्होंने संकल्प किया आज ही तो जाएंगे, पहुंच गए। दृढ़ता में बहुत बड़ी पावर है, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता भी है और बाबा का साथ भी है। हम हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो, बोलो आगे, बढ़ाता है या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कहने की बात हो गई है, नहीं पक्का कहने की नहीं है, सच्ची बात है। तो कौन करेगा हिम्मत, कितना योग होना चाहिए, 8 तो मुरलियों में है, आप अपनी बात करो, 8 तो मुरलियों में है, वो तो बाबा कहता, आपने भी कह दिया, कितना योग होना चाहिए, 4 तो होना ही चाहिए। अब जब ये बात आती है तो सब सोचते हैं 4 घंटे कहां से बैठेंगे, बात बैठने की नहीं है। जो ये सोचते हैं समझ लो उन्होंने अभी योग क्या है समझा ही नहीं है, बैठने की बात नहीं है। श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना है। मैं इसी होल की एक बात सुनाया करता हूं, ये जो स्टेज अब बनी है ये तो भी 2-4 साल पहले बनी, प्लेन था, बाबा यहां आते थे, बाबा आए, छोटी क्लास होती थी, इसे आधी भरी थी, ये सोफे कुर्सी तो होती ही नहीं थी, सब नीचे बैठते थे, ये गद्दे भी नहीं होते थे, नीचे से एक्यूप्रेशर भी होता था, सिंपल होता था सब कुछ। बाबा आए, बाबा की मुरली के बाद 1 घंटा ही चलती थी, बहुत लंबी चौड़ी नहीं। बाबा को एक गिलास जूस दिया जाता था, तो कोई न कोई बाबा से पार्टियों को मिलाने के लिए 7 बहन बैठती थी। तो उस दिन बैठी थी एक बहन, होती थी शीलिंद्रा दादी, पुरानी मुंबई में रहती थी, वो आई हुई थी, उसको ड्यूटी दी गई थी आज के मिलन में आप सबको मिलाएंगी। तो वो बाबा के, ब्रह्मा बाबा के बहुत समीप थी लौकिक में, तो बाबा को जैसे ही जूस का गिलास दिया, बाबा ने उस पर दृष्टि डाली और उसने फट से पूछा, बाबा आप किसे याद कर रहे हो। वो बहुत हंसमुख और मनोरंजन जैसी करती थी बाबा के साथ। बाबा ने, अब शिव बाबा ने उत्तर दिया बहुत सुंदर, हम तो सुनने वाले थे, हम सब भी यहीं बैठे होते थे, जैसे आप नीचे बैठे हैं ना, बिल्कुल यहीं। तो शिव बाबा ने उत्तर दिया, अब इसे, इसे माना ब्रह्मा बाबा को, किसी को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। हमारी एक नया राज समझ में आ गया कि योग युक्त हो ना माना स्मृति स्वरूप हो ना। बहुत सारी स्मृतियां तो मैंने तो उसी समय जाकर मुरली पूरी हो जाती थी 8 बजे तक, क्योंकि 6 बजे दादी आ जाती थी, 6:30 से प्रोग्राम शुरू, 8 बजे तक मुरली पूरी। तो पहला काम किया, बाबा ने क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। वैसे तो बहुत दिलाई हैं, पर मैंने 25 लिख दी उस समय और उसके अभ्यास किए तो पाया कि सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है। स्मृतियों में रहने से व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब देखो क्या स्मृति दिलाई, मैं आपको कुछ बता दूं जो किसी ने नहीं बताया था आज तक। तुम आत्माएं सतयुग में देवी देवता थे, किसी वेद में लिखा हुआ है, कहीं शास्त्रों में दर्शन पुराण भागवत उपनिषद कहीं नहीं है। बाबा ने स्मृति दिलाई तुम देवता थे, उसको याद करना। बाबा ने स्मृति दिलाई जो मुरलियों में आजकल बहुत आई, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर वापिस चलना है, 5000 साल का खेल पूरा हुआ। प्रैक्टिस की, बहुत आनंद आ गया। अपने बारे में बहुत स्मृतियां दिलाई, मैं तुम्हारा हूँ। कई बार तो बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के तन में सीधा सीधा याद दिलाते थे, बच्चे मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कोई सोचे कोई और तो नहीं आ गया, मैं वही हूँ। तो स्मृतियां दिलाई बहुत सारी, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो, हीरो एक्टर हो, आज भी था ना वरदान में, तुम कल्प कल्प के विजयी हो, ये याद दिलाया। याद आने से हमारी सोई हुई शक्तियां जग गई, ये याद करना, ये भी योग युक्त होना है। फरिश्ता माना डबल लाइट जो आपको स्वमान दिया गया आज, इसके दो अर्थ हैं। एक पहला अर्थ, मैं आत्मा भी लाइट ज्योति, मेरा मन भी लाइट, लाइट माना हल्का। सभी बहने माताएं बोली बोली जो बैठी हैं वो भी जान लें, लाइट के कई अर्थ हैं, जो रोशनी आ रही इसको भी लाइट कहते हैं। लाइट माना बहुत हल्का, आत्मा भी बहुत लाइट है, हल्की भी है, ज्योति भी है, और मन को भी हल्का रखना, ये फरिश्ते बनने की विधि है। दूसरा लाइट, डबल लाइट का अर्थ, मैं आत्मा प्रकाश और मेरा शरीर भी प्रकाश का, जिसकी हमने चर्चा की, डबल लाइट। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे हमें योगयुक्त होना हो, चाहे इस जीवन का आनंद लेना हो, मन को हल्का रखना। जो चैलेंज हो गया है संसार में आजकल बहुत बड़ा, और जिसको हमें सरल बनाना है, इस धारणा को बहुत हल्के रहना, जैसे हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, हमारे मन पर कोई चिंता नहीं है, दबाव नहीं है। हम थोड़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं, कौन बनेंगे हल्के, कैसे हो सकते हैं हम हल्के। इसके लिए हमें अपने पास ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें रख लेनी चाहिए, कम से कम 8। मैं नहीं लिखाऊंगा आपको, क्योंकि अगर मैं लिखा देता हूं तो वो आपकी डायरी में रह जाएंगी। आपको खुद लिखनी है, सोच के मन को हल्का करना है तो ज्ञान की कौन सी बातें हमारे मन को हल्का करेंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, आज की मुरली में भी है, वरदान में ही है, मैं क्या हूं और बाबा क्या है। पहुंचो सवेरे, करण करावन हार। अब ये हम केवल कहते हैं या सचमुच हमें इसकी फीलिंग है? संगम युग पर हमें ये अच्छी तरह मान लेना है कि अब जो कार्य चल रहा है और हम अब जो बाबा से जुड़ गए हैं, ध्यान से सुन लेंगे, हमारे बहुत सारे काम बाबा खुद करा देता है, पर किनके? जो उनसे जुड़े होंगे, जो उन पे संपूर्ण विश्वास रखते होंगे। कई जब ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं तो ज्यादा सोचने लगते हैं, क्या हमने कर्म किए तो हमें ही तो फल मिलेगा, इसमें बाबा क्या करेगा। अब ज्ञान की दृष्टि से तो परफेक्ट बात है, जरा भी गलती नहीं है, पर बाबा भी कुछ करता है। करता है या नहीं बताओ? बाबा ने मुरली चलाते हुए अब से लगभग 8 साल पहले एक सुंदर बात कही थी। पहली सुंदर बात तो ये थी, तुम रात को बाप को गुड नाइट करो या न करो, बाप तो करने आता है। देख लो इस लाइन में क्या क्या समाया हुआ है। फिर मुरली चली थी इससे पहले कि रोज रात को अपना सारा हाल बाप दादा को सुना दो, लिख दो। या तो बाबा भोलानाथ हल्का कर देगा। और बहुत पावरफुल बात बोली थी, अगर तुम ऐसा करोगे तो धर्मराजपुरी में जाने से बच जाओगे। ये स्पेशल गिफ्ट बाबा की अपने बच्चों के लिए, जैसा करेंगे वैसा सबको फल मिलेगा, ये तो सिद्धांत है, पर अपनों के लिए वो इस सिद्धांत में मदद कर देता है, सुना दे उसको। तो ऐसी बातें, हमें हल्का होना है। बहुत पावरफुल बात, सुन ले आप, एक दो में सुना देता हूं, बाकी आप लिखना खुद चिंतन करके। मेरी बहुत प्रिय बात थी ये, बाबा ने कहा अपने मन के बोझ सारे मुझे दे दो, ये तो आपने सुना है। तभी ये गीत भी बना था, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। लेकिन आगे की लाइन बहुत ही काम की है, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? सोचो गहराई से, इस लाइन में भी क्या क्या भरा हुआ है। बाबा हमें विश्वास दिलाता है, दे दो, क्यों बोझ लिए घूमते हो, पर सबसे देना आता नहीं। लिख लेना ये बात, अपने घर में लिख के रख देना, रोज जरा ध्यान देना इस पर। विश्वास दिला रहा है, मैं सारे संसार का बोझ उठाने वाला हूं, क्या तुम्हारा नहीं उठाऊंगा, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, उठाएगा या नहीं? और क्यों मनुष्य बोझ नहीं दे पाता? लंबे समय का मैं और मेरा भरा हुआ है, जो इनसे ऊपर उठने की मेहनत करते हैं वो बाबा को बोझ देकर हल्के हो जाते हैं। बाकी तो पढ़ेंगे, कहेंगे बाबा बोझ ले जाओ, और अगले मिनट बोझ फिर सिर पर। मैं और मेरा, जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक चली गई हैं, गई है या नहीं, इससे मुक्त होना एक अच्छी साधना है। चिंतन करो इस भट्टी में, मैं और मेरा, हर जन्म में कितने मेरे रहे बोलो, हर जन्म में कितने मेरे थे? 10-20 तो होंगे ना, और जन्म बदलते ही वो मेरे भी बदल गए। 84 जन्मों में बदलते गए, मैं और मेरे दोनों बदलते गए, अब भी बदल जाएंगे। क्लियर है ना बात, जो इनसे बाहर निकल जाए, निकल जाए। कितनों की कहानी सुन रहे हैं हम ज्ञान वालों की, बहुत उलझे हुए, बस जरा सा दर्द हुआ इधर को, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचे, ओम शांति, सब देखते रह गए क्या हो गए, अभी 15 मिनट पहले तो यहीं थे, अब यहीं नहीं, कहां गया मैं और मेरा, उनके बच्चों को कोई संभालेगा या नहीं, क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। हर एक आत्मा अपना भाग्य साथ लेकर ही चल रही है, हम किसी को नहीं संभाल रहे हैं, हम किसी को नहीं खिला रहे हैं, चाहे सेवाओं की बात हो, सब ऊपर से कंट्रोल्ड है। दूसरी बात पावरफुल, जो सबसे पावरफुल है, बाबा ने 2-4 बार सुनाई है, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। और इसके पीछे क्या राज बताया, मेरे को तेरे में बदल दो, फिक्र बाप से बाप को देकर क्या बन जाओ, क्या ले लो, फखुर ले लो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक दिन में मनुष्य निश्चिंत नहीं हो सकता, आदत ही बनानी है निश्चिंत रहने की। कई लोग दुनिया में भी हैं, थोड़े हैं, मस्त रहते हैं, जो कमा लिया ठीक है, जो खाने को मिला आनंद है, ज्यादा सोचते परेशान नहीं होते हैं, सब ठीक है, आनंद ही आनंद है। अपने मन को ऐसा सेट करें कि छोटी बातों में चिंता करने की आदत संस्कार न हो। क्या विचार है माताओं का, पहले मैं माताओं को देख रहा हूं, दूर की माताएं तो नहीं दिखती, नजदीक वाली दिख रही हैं, हो सकते हैं हल्के या नहीं, बच्चों की शादी करानी है अभी तो, बहू का मुंह भी देखना है, कुछ दिनों में कहती हैं इसका मुंह नहीं देखना चाहती, डबल काम हो जाता है, पहले इसलिए परेशान थी कि मुंह देखना था, अब इसलिए परेशान कि मुंह देखना ही नहीं चाहती। बहुत चल रहा आजकल दुनिया में, निश्चिंत रहना अपने हाथ, मेरे पास माताएं आती हैं ना ये सब बात लेके, तो मुझे पता चलता है, मैं माताओं से हंसी किया करता हूँ, एक ही साल तो हुआ शादी में, बहू ने नाक में दम कर दिया, अब कैसे इससे मुक्ति पाऊं, रास्ता बताओ। मैंने कहा तुमने ही तो कहा था, तुमने ही आह्वान किया था, अब आ गए हिसाब लेने, अब आराम से दे दो ना। निश्चिंत होना बहुत बड़ी कला है। तीसरी बात भी लिख लो, कल पहले जैसे हुआ था वैसे ही अब भी हो जाएगा। हमारे दुखी और परेशान होने से कुछ बदलेगा नहीं, हमें तो केवल पुरुषार्थ करना है, ऐसे अपने को हल्का करना, ये बहुत आवश्यक है। तो बाबा की इस पर बहुत गहरी मुरलियां हैं, कुछ दिन पहले भी आ चुकी है संडे को अव्यक्त मुरली। संसार में भी ये सारे काम लाइट से हो रहे हैं, बिजली से, साइंस के बहुत सारे चमत्कार भी इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइट से हो रहे हैं। तुम भी जिस दिन बहुत लाइट हो जाओगे तो तुम्हारे द्वारा चमत्कार होने लगेंगे। जिस दिन हमारी ये स्थिति हो जाएगी, सब कुछ बाबा कर रहा है, शास्त्रों में ये बात है, तो लोगों ने इसको न ठीक से समझा, न विद्वानों को समझाना आया, किसी ने कहा सब कुछ भगवान कर रहा, आत्मा ने लेप है, खाओ पियो मौज करो। एक काका हाथरस ही होते थे, हाथरस के कवि काका, वो इस बात पे बड़ी मजाक की कविताएं लिखा करते थे, पंडित जी आ गए हैं खाने पीने के लिए, जिमाया है पंडित जी को, कहता है सब कुछ भगवान कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ले आओ सब माल। बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे वो। तो किसी ने सोचा सब कुछ करण करावन हार ही कर रहा, मैं क्यों करूं, कर ले तू ही भाई जो करना है। दोनों ही बातें गलत हो गई। ये संगम युग की बात है, ये हर जन्म की बात नहीं है कि यहाँ बाबा की शक्तियों से ही सब कुछ हो रहा है। फरिश्ता वही बन सकेंगे जो बहुत एकाग्र चित्त होंगे, बहुत एकाग्र, जो आप में से बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं और जो अपनी स्थिति को बहुत महान बनाना चाहते हैं, वो बाबा की एक बात नोट कर लें, बुद्धि को एकाग्र करना तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है। बुद्धि को एकाग्र करना तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है, हमें इसे एकाग्र करना है। बहुत भागती है बुद्धि, कहाँ भागती है? मन और बुद्धि दो चीजें हैं। बुद्धि में जिसने जो भरा है, बुद्धि उस अनुसार काम करती रहती है। अब जो बुद्धि में ज्ञान भर लेंगे, इसको ज्ञान का भंडार बना देंगे, और जो अपनी बुद्धि में बाबा के वरदान भर लेंगे, उस अनुसार बुद्धि काम करेगी, स्थिर हो जाएगी। बुद्धि खाली भी बहुतों की है, छलकती रहती है, बाहर खींचती रहती है। बुद्धि को ज्ञान से, शक्तियों से, प्योरिटी से, वरदानों से भरेंगे, फुल रहेगी, एकाग्र हो जाएगी। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। एक एक्सरसाइज, एक प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ, आप करेंगे तो एकाग्रता अच्छी हो जाएगी। बुद्धि है हमारी, बुद्धि की कई डेफिनेशन है, कई परिभाषाएं हैं। पहली सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धि है विवेक शक्ति, पावर ऑफ विजडम। इसमें हम विजडम भर रहे हैं, विवेक भर रहे हैं। इस ज्ञान को जो अपना विवेक बना दें, उनकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी। दूसरा, बुद्धि है धारणा शक्ति। जो कुछ भी हम धारण करना चाहते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, वो सब बुद्धि पात्र में, बुद्धि पात्र है, इसमें सब भर रहे हैं हम, ये धारणा शक्ति है। प्योरिटी भी कहाँ धारण होती है? बुद्धि में। अब हमने क्या धारण कर लिया है वो हमें देखना है। और जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं उनके लिए मैं एक संकल्प दे रहा हूं, हमने अपना इनर वर्ल्ड कैसा बनाया है, हमारा अंदर का संसार हमने कैसा रच लिया है, जांच करना और फिर सोचना मुझे अपना अंदर का संसार कैसा बनाना है, उसमें प्रेम भरा है या नफरत, शांति भरी है या क्रोध, अभिमान भरा है या स्वमान, सबके लिए शुभ भावनाएं भरी हैं या बदले का भाव, बहुत कुछ है। क्या बनाया है हमने अपना इनर वर्ल्ड, अंदर का संसार, इस पे बहुत काम करना है सभी को। तीसरा, बुद्धि है ज्ञान का तीसरा नेत्र। और चौथा तो आप सब जानते हैं, जो क्लासेस में बहुत सुनाया जाता है, बुद्धि का काम है निर्णय करना। वो बुद्धि का काम है, पर बुद्धि, ये तीन चीजें हैं। तो बुद्धि तीसरा नेत्र है। अब जो प्रैक्टिस मैं आपको कह रहा था वो ये है, इस बुद्धि के तीसरे नेत्र से अपने स्वरूप को बहुत क्लियर देखें। आत्मा इन दो नैनों से नहीं दिखती, तीसरे से दिखती है। तीसरा नेत्र जितना स्वच्छ होगा आत्मा दिखेगी। और आप ये अनुभव करें, यही मधुवन में कर लें, छुट्टी हो आपकी क्लासेस से, एक मिनट बुद्धि के नेत्र से आत्मा को देखने लगो, यानी बुद्धि आत्मा पर एकाग्र हो जाए अनुभव करेंगे आधा घंटा कम से कम उसका इफेक्ट हो गया मन शांत। तो एक एक्सरसाइज करेंगे इसको रूहानी ड्रिल कहते हैं बाबा। 10 सेकंड से शुरू करेंगे, 10 सेकंड आत्मा को देखेंगे, चमकती मणि, मस्तक मणि, स्वराज अधिकारी। फिर 10 सेकंड बाबा को देखेंगे परम धाम में, महाज्योति ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। संकल्प के साथ एकाग्रता के लिए इस रहस्य को याद रखेंगे, बुद्धि से देखने के साथ मन में संकल्प भी हो, मन और बुद्धि साथ साथ एकाग्र हो। भक्ति में क्या हुआ, भगवान की महिमा तो यही की है ना, जो हम कर रहे हैं केवल मन से की। बुद्धि कहाँ स्थिर करें, सर्वव्यापी कह दिया, कहाँ करें बुद्धि स्थिर, तो बुद्धि भटक गई। अब बाबा ने अपने धाम और स्वरूप का ज्ञान दिया, तो परम धाम में उसके स्वरूप पर 10 सेकंड बुद्धि को स्थिर करें और ये ड्रिल करें। फिर 10 सेकंड आत्मा पर संकल्प दें कुछ, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। फिर 10 सेकंड शिव बाबा पर, वो ज्ञान सूर्य है। ऐसे आप 10-10 बार करके देखना, यही कर लेना, आज सोने से पहले कर लेना, खाने के बाद कर लेना, आनंद आएगा, मन एकाग्र होगा, बुद्धि स्थिर होगी, क्लीन होने लगेगी, स्वच्छ होने लगेगी बुद्धि, बहुत सुंदर अनुभव होंगे, योग बहुत अच्छा लगेगा। हमें फरिश्ता बनना है, अब पूछ लो अपने से बनना है, यदि सचमुच इच्छा है बनने की। अब ये ना सोचो सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, कोई रिश्ता नहीं किसी से, फिर माताएं कहेंगी बच्चों का क्या करेंगे हम, उनसे तो हमारा रिश्ता है। आत्मिक रिश्ता बना दो, केवल परिवर्तन करना है। ये सब आत्माएं हैं, बाबा ने हमें ये फूल दिए हैं पालना करने के लिए। और आप में से जो बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हो, उन्हें इस समय एक विशेष स्वमान का अभ्यास करना है। मैं पूर्वज हूं, पूर्वज माना बड़े, पूर्वज माना सबकी पालना करने वाले। अब ये पालना करने का काम बढ़ता जाएगा, ज्ञान देना कम होता जाएगा, पालना करना ज्यादा होता जाएगा। वाइब्रेशन से पालना, दृष्टि से, सुभावनाओं से, मन की शक्तियों से, जो खजाने हमने जमा किए हैं वो सब देने पड़ेंगे। विधाता बनना है ना, कली था ना, मैं सोच रहा था बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दे दिया हमें। भगवान को विधाता कहते हैं, ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं, उन्हें कहा तुम सब विधाता हो। पूर्वज माना बड़े, पूर्वज माना बड़े हैं, तो विचार बड़े, दृष्टि बड़ी। केवल अपने परिवार की पालना करने वाले पूर्वज नहीं, वो तो करेंगे आप धन से, अन्न से, जैसे भी घर में करते हैं, विश्व की पालना करेंगे। जो कल की मुरली में टाइटल मिला, तुम्हारी महिमा है शांति देवा, सुख देवा, ये पालना हमारी पालना होगी, सभी के विघ्नों को नष्ट करने की पालना। मैं एक बात कहा करता था बहुत 5 साल से पहले से, कि ऐसा समय आएगा जब इस संसार की आधी पॉपुलेशन रात को सोएगी नहीं। उस समय तेजी से आ रहा है, 2025 तक हम वो प्रत्यक्ष देखेंगे। तो बाबा के कुछ पूर्वज बच्चे जिन्होंने लंबा काल पूर्वज स्थिति का अभ्यास किया, अपने को इस स्थिति में ले आए हैं, वो अपने कमरे में बैठकर ही सबको दृष्टि देकर सुला सकेंगे। ये होगी बहुत बड़ी पालना पूर्वजों की, इसलिए पूर्वज स्वरूप को बढ़ाते चलें और रोज बाबा की मुरली में आ भी रही है बात, ये आ गई है, सकास देने की सेवा करो तो जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। शायद दो चार दिन में आ रही है मुरली। सकास देना माना बहुत पुण्य करना, और पुण्य कर्मों से पाप का प्रभाव ढीला पड़ जाता है। पाप का एक प्रभाव है मनुष्य के ऊपर। देखो कैसे है, कई लोग योग में बैठेंगे ही और सो जाएंगे, एक मिनट की जो ट्यून बजती है ना उसमें भी विश्राम कर लेते हैं, ये दबाव है पाप का। कई लोगों को खुशी नहीं रहती, चिंताओं में जीवन बीत रहा है। उनसे पूछो क्या चिंता है, उन्हें भी नहीं पता पर चिंता है, ये पाप का प्रभाव। तो रोज एक सुंदर काम करेंगे पूर्वज। अब आप सोच लें कौन पूर्वज हैं, ये आपको सोचना है। ये कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है ना, सबको पता है, बीज ऊपर जड़े ऊपर नीचे ये फैलता है। अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं, बाबा से वाइब्रेशंस लेंगे और फिर नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं ये अभ्यास। तो पूर्वज बनकर सभी धर्मों की आत्माओं की पालना। अब एक सुंदर और गहरा महावाक्य आप सुन लें, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का बल संसार की सभी आत्माओं को मिलता है। यह पूर्वज की स्थिति। पूर्वज होते ही हम जुड़ गए सारे संसार से, गहरी बात है। बाबा तो सबका बाप है लेकिन वो ऊपर है ना, सब उससे जुड़े हुए नहीं है तो वो भी नहीं जुड़ा है। हम पूर्वज बनते ही हम संसार से जुड़ जाते हैं और उसका सब कुछ लेकर संसार को देते हैं, ये हमारा काम है। हम जड़े हैं, जड़ों से भोजन जाता है ना पेड़ को, तो हमारे माध्यम से बाबा का सब कुछ कल्प वृक्ष में फैलता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका फल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। इसलिए सभी ये पुण्य रोज शुरू कर दें, 10 मिनट के लिए कभी भी, जब आपका योग अच्छा लगता हो, चाहे वो दोपहर का समय ही क्यों न हो। मैं फरिश्ता पूर्वज इसकी जड़ों में हूं, बाबा के वाइब्रेशंस फिर वो पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं, तो आपके अनेक विघ्न अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी और बहुत सुंदर अनुभव होगा। संसार की सभी आत्माओं की दुआएं और प्यार सूक्ष्म रूप से सम्मान मिलने लगेगा। जो कल था ना, सम्मान मांगते हैं, कहो किसी को भाई मुझे सम्मान दो, तुम देते नहीं हो, कैसा लगेगा। और बाबा ने कहा विधाता की स्थिति सूर्य के समान और मानसान नाम दीपक, वो कितनी बड़ी स्थिति, ये कितनी छोटी मांग। लास्ट बात, अब जिनको फरिश्ता बनना हो, अब मैं कहूंगा नहीं आप सब बने या क्या, जिनको सचमुच इच्छा हो मुझे फरिश्ता बनकर विश्व कल्याण करना है, अपनों के काम तो बहुत आ गए अब संसार के काम आना है, तो अपने सामने की दीवार पर, अपने घरों में, अपने सामने दीवार न हो तो सामने, अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप का चित्र बना दो मन से। जब मैं संपूर्ण फरिश्ता बनूंगी तो ऐसी होंगी, धरती से ऊपर बाबा से जुड़े हुए, उसके वाइब्रेशन आ रहे हैं, हमारी किरणें चारों ओर फैल रही हैं, संपूर्ण फरिश्ते हैं, हमारे नैनों से लाइट माइट की किरणें चारों ओर जा रही हैं, हम बहुत डिवाइन हो गए हैं, दिव्य हो गए हैं, हम सुखदाई हो गए हैं, लेने वाले नहीं देने वाले बाप समान। अच्छा चित्र बना दो, रोज एक बार बना देना एक दो मिनट के लिए, ये हूं मैं। ऐसे गुड फीलिंग सभी को देनी है अपने को। पसंद है तो पहले योग अभ्यास बढ़ाना है, सोच के भारी नहीं होना कि फरिश्ता बनना तो बहुत कठिन काम है, नहीं हम फरिश्ते हैं ऐसा मान लेना। एक और बात सुना देता हूं, 82 की मुरली, तब से मुझे नोट है वो बात। बाबा ने कहा, तुम सोचते हो हमें संपूर्ण पावन बनना है तो मंजिल बहुत लंबी दिखाई देती है, संपूर्ण पावन भारी काम है। तुम ये सोचो मैं परम पवित्र आत्मा हूं। अगर तुम सोचोगे मुझे बाप समान बनना है तो लगेगा ब्रह्मा बाबा ने जो जो किया हम तो कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, छोड़ दो। ये संकल्प करो मैं बाप समान हूं, तो विचार महान, कर्तव्य महान, दृष्टि महान, कर्म महान स्वतः ही होने लगेंगे। तो मैं फरिश्ता हूं, डबल लाइट फरिश्ता हूं, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। चिंतन बहुत जरूरी है, अंडरलाइन कर लें, बिना चिंतन के स्थिति नहीं बनेगी। बहुत लोग क्या करते हैं, योग में बैठे मन नहीं लगता, भटक गया, आधा घंटा बैठ के परेशान दुखी होके उठ गए, योग नहीं लगता। चिंतन शुरू करो, कब आए थे, कहां से आए थे, देवता कैसे थे, कैसे उतरते आए, चिंतन शुरू करो। योग लगे न लगे छोड़ो कुछ समय, चिंतन करते योग स्वतः ही लग जाएगा। अब लाल लाइट कर दो, आधा घंटा मैं आपके साथ हूं, बहुत पावरफुल योग करेंगे। मैं आपको संकल्प देता हूं, फरिश्ते स्वरूप का भी और बीज रूप भी। एक बहुत ही सुंदर अनुभव सूक्ष्म वतन का, जो हमारा बहुत सुंदर अनुभव है, प्रभु मिलन है, उसे भी हम सब करेंगे। मैं चमकती हुई मस्तक मणि, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, देखते चले अपना स्वरूप और साथ में चिंतन भी। मुझसे चारों ओर शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, अभी शरीर को यहीं छोड़कर मैं आत्मा चली अपने धाम, अपने को उड़ता हुआ देखें ऊपर, केवल मैं आत्मा निराकार। पहुंच गई शांति धाम में, मैं अपने घर में हूं। डीप साइलेंस में शांत, जैसे कि शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। ऊपर, सबसे ऊपर चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा। बुद्धि के नेत्र से देखें उन्हें, मैं उनके एकदम समीप हूँ। उनकी संपूर्ण एनर्जी मुझ में समा रही है। यहां से मैं आत्मा वापिस अवतरित हुई अपनी देह में, भ्रकुटी की कुटिया में। मैं महान आत्मा, हीरो एक्टर, विश्व कल्याण के लिए इस देह में अवतरित। मैं फरिश्ता हूं, डबल लाइट, लाइट हाउस, लाइट हाउस, बहुत हल्का, अंग अंग से लाइट और माइट फैल रही है। मैं फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म लोक आकाश के ऊपर, अपने को देखें आकाश के ऊपर, यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश, ये फरिश्तों की दुनिया। सामने बाप दादा, बहुत तेजस्वी स्वरूप, अंग अंग से तेज फैल रहा है। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिए, बच्चे विजयी भव, श्रेष्ठ योगी भव, सफलता मूर्त। सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया, उनके हाथ से बहुत सुखदाई वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। स्मृति दिलाई, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। स्वीकार करते चलेंगे, तुम बहुत महान हो। तुम इस सृष्टि पर बहुत बहुत भाग्यवान हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम इस सृष्टि के श्रृंगार हो। तुम इस सृष्टि के आधार हो, कल्प कल्प के विजय रत्न हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि लेते हुए हम वापिस अपनी देह में पवित्रता का फरिश्ता हूं। इस धरा को, प्रकृति को पावन बनाना मेरा मुख्य कार्य है। परमधाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा सृष्टि के बीच पतित पावन गति सदगति के दाता, उनकी पवित्र किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही है। परमात्मा पवित्रता मुझ में समा रही है। यहां से मैं फरिश्ता उड़ा उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठा, पूर्वज हूं, सभी धर्मों की आत्माओं की पालना करने वाला पूर्वज, बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। मुझसे ये पवित्र वाइब्रेशंस नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। सभी धर्मों की आत्माओं को पवित्र वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, पवित्र बनने की प्रेरणा मिल रही है। मैं फरिश्ता वापिस ग्लोब के ऊपर, धरती के गोले के ऊपर, विश्व को पावन करने के निमित्त सभी के दुख हरने वाला फरिश्ता पूर्वज बैठाए अपने को धरती के गोले के ऊपर। सर्व शक्तिवान की शक्तियां परम धाम में देखें, सर्व शक्तिवान महाज्योति उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़कर चारों ओर फैल रही हैं।
मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया
चलता रहेगा।